हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जब अमित को लगा कि अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो वो चक्कर खाकर किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है, तो इसीलिए अमित जल्दी से अपने एक विशेष कमरे में चला गया था। वहाँ जाकर उसने उसे जादुई पानी में देखना शुरू कर दिया था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। जादुई पानी को जैसे ही उसने अपने साथ क्या हुआ है ये दिखाने के लिए कहा, जादुई पानी ने उसका और उसकी लड़की के साथ जो जिस्मानी रिश्ता बना था वो दिखाना शुरू कर दिया था। अमित ने जिस्मानी रिश्ता बनाते वक्त अमित की नज़र जैसे उसे लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वो हैरान हो गया था। उस लड़की का चेहरा अलग अलग तरीके के रंग बदल रहा था। जब अमित उसके करीब था वो लड़की अलग अलग तरीके के रंग बदल रही थी। अब अमित ने जैसे ये देखा उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ है। वो तो एक सड़क पर बैठी हुई भिखरन को अपनी बेवी बनकर लेकर आया है, तो फिर ये इस तरह के रंग कैसे बदल सकती है। अमित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था जैसे अगर किसी भी पल उसकी जान जाने वाली थी। अब अमित को लगने लगा था कि औरत को अपनी जिंदगी कमजोरी बनाकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। एक औरत की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई थी। जल्दी से अमित ने अपना एक कड़ा तप करना शुरू कर दिया था और उसने अपनी जिस्म में से अपनी आत्मा को निकालकर सीधा अपने गुरु काली शक्तियों के गुरु के पास भेज दिया था। जैसे ही अमित की आत्मा काली शक्तियों के गुरु के पास गई, उसके गुरु ने उसे वहां आते ही पहचान लिया था और कहा था, अभी क्यों आए हो? जब तुम्हारी पूरी जान निकल जाती तब आ जाते। अभी जब तुम्हारी थोड़ी सी जान बची हुई है तो अब क्या करने आए हो? जैसे उसके गुरु ने ये कहा, काली शक्तियों के अमित गुरु के अमित की आत्मा एकदम से हैरान हो गई थी और उसने बोलना शुरू कर दिया था, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप प्लीज़ मुझे बताइए मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अमित की इस तरह की बेचैन भरी बातें सुनकर काली शक्तियों का गुरु जोर से हंसने लगा था और बोला था, रे बेवकूफ, तेरे बस का कुछ नहीं है। तू जानता है तूने किसके साथ रिश्ता बनाया है? तूने एक डायन के साथ रिश्ता बनाया है। जिस लड़की को भिखरन और एक लड़की समझकर तू अपने साथ लेकर आया था, असल में वो एक डायन है और उसके साथ रिश्ता बनाने पर तेरे जिस्म की आधे से ज्यादा शक्तियाँ उसके अंदर चली गई है। जैसे ही अमित ने ये सुना, उसका हैरानी के मारे बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया था और वो उस दिन को सोचने लगा था जब वो उसे लड़की को अपने साथ उसके अपने घर पर लेकर आया था और उसे रह रहकर ये याद आ रहा था कि वो तो उसके माँ बाप से भी मिला था, तो फिर उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता था। तब काली शक्तियों के गुरु हंसने लगे थे। उन्होंने कहा था, तुझे याद है तूने इस लड़की को कहां देखा था? याद कर और याद करके बता। अमित की आत्मा अपनी याददाश्त पर जोर डालने लगी थी, लेकिन तभी उसने अपने गुरु को बताया कि उस लड़की को सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई ही मिली थी और वो हमेशा से वहीं बैठकर भीख मांगा करती थी, लेकिन मेरी नज़र कभी भी उसे पर नहीं गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका गठीला और कसीला बदन देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं उसकी ओर खिंचा चला गया था। अमित की बात सुनकर काली शक्तियों का गुरु जोर से हंसने लगा था और बोला था, अबे बेवकूफ, तूने उसे लड़की को उसे पीपल के पेड़ के पास से उठाया था जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठकर भीख मांगा करती थी। शायद तुझे नहीं पता है, पिछले 200 वर्षों से उसे पीपल के पेड़ पर डायन का परिवार निवास करता था और वो लड़की पिछले 10 से 12 साल से हर रोज उसे सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर भीख मांगा करती थी। और फिर एक दिन एक डायन उसके लंबे खूबसूरत बालों को देखकर उस पर मोहित हो गई थी और उस डायन ने ही उसे वो खूबसूरत और कटीला बदन दिया था ताकि तू उसे पर मोहित होकर उसके करीब आ जाए, और उसकी चाल कामयाब हो गई थी और उस भिखारण के ऊपर उसने वास कर लिया था। और जब उस डायन ने तुम्हें उसके पास देखा और वो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी, इसीलिए उसने अपने माँ बाप को छोड़कर तुमसे शादी कर ली थी और उस डायन के मन में उसके उस लड़के के बूढ़े माता पिता या फिर भाई बहनों के लिए किसी भी तरह की कोई हमदर्दी नहीं थी, इसीलिए उसने तुम्हें उनसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन तुम फिर भी उसे वहां उनके साथ सामने ले गए। क्या तुम्हें तब एहसास नहीं हुआ? काली शक्ति के गुरु ने अमित की आत्मा से सीधे सीधे कहा था। अमित को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही ज्यादा नया था। अब सब कुछ आपके हाथों में है, अब आप ही कुछ कर सकते हो। अमित को सब समझ आ गया था, इसलिए वो अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और कहने लगा था कि मेरी रक्षा कीजिए गुरुजी, मेरी जान पल पल जा रही है, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी बात सुनकर उसके गुरु ने उसे कहा था, तेरी रक्षा अब सिर्फ और सिर्फ मायावी सरोवर में स्नान करने से ही हो सकती है। अगर तू मायावी सरोवर के स्वच्छ जल में स्नान कर ले तो तेरी खोई हुई शक्तियां वापस मिल सकती है। साथ ही साथ डायन के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के बाद तेरे जिस्म में जितनी भी अशुद्धियां जमा हो गई हैं वो एक एक करके सब खत्म हो सकती हैं। और हाँ, याद रहे, अब तेरा उस डायन से विवाह हो चुका है, तो तू इतनी आसानी से अब उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। अब एक और बात कान खोलकर सुन ले, तुझे जितना हो सके उसे डायन से दूर रहना होगा, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना होगा। अगर तूने एक बार फिर से उसके साथ रिश्ता बनाया तो वो इस बार तेरी जान ले लेगी, क्योंकि उसे अभी तक इस बात के बारे में नहीं पता है कि तुझे उस पर शक हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि आधी शक्तियां तेरी उसके पास चली गई हैं, लेकिन वो शक्तियां कब और किन सूरतों में वापस आएंगी ये मैं तुझे बहुत जल्द बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी जान बचानी होगी। जल्दी से जाकर मायावी सरोवर में स्नान कर। तब काली शक्तियों के मालिक अमित की आत्मा ने अपने गुरु से कहा था, लेकिन मैं स्वच्छ जल वाला मायावी सरोवर कहाँ ढूंढूंगा? तब उसके गुरु ने उसे कहा था कि तुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिन महाराज का जो बगीचा है उसमें वो मायावी सरोवर है। अगर तू उसमें जाकर स्नान कर लेता है तो तेरी खोई हुई शक्तियां वापस मिल जाएंगी। जैसे ही काली शक्ति के गुरु ने अमित से ये कहा, अमित की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने केवल आज तक अमन के बगीचे के बारे में सुना था, लेकिन उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि उसे बगीचे में कोई मायावी सरोवर भी हो सकता है। तब उसने अपने काली शक्ति के गुरु से कहा था, लेकिन मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ? वहाँ तो ऑलरेडी उसके दादाजी महाराज निवास करते हैं और वो समाधि में बैठे हुए हैं, क्या वो मुझे वहाँ जाने की परमिशन देंगे? तब काली शक्तियों के गुरु ने अमित से कहा था, ये सब बताने का मेरा काम नहीं है। तुमने मुझसे पूछा कि तुम कैसे ठीक हो सकते हो और मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ। अब तुम उसे सरोवर में किस तरह से जा सकते हो, कैसे कैसे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कहकर काली शक्तियों के गुरु ने अमित की आत्मा की ओर एक मंत्र पढ़कर फूंका था और देखते देखते अमित की आत्मा काली पहाड़ी पर से गायब हो चुकी थी और वो वापस से उसके शरीर पे पहुंच चुकी थी।
अमित के शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी से महसूस हो रही थी। वो समझ चुका था उसके गुरु ने मंत्र फूंककर उसकी आत्मा को वापस से उसके जिस्म में फूंक दिया है, इसीलिए वो वापस से लौट आया है। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मायावी सरोवर तक कैसे जाएं, क्योंकि जब तक वो मायावी सरोवर में स्नान का नहीं करेगा वो ठीक नहीं होगा। कुछ सोचकर अमित किसी को SMS करने लगा था। वही तारापरी उस अदृश्य जिन के साथ घर लौट आई थी। जैसे ही तारापरी घर लौट कर आई, विक्रांत रंधावा CCTV फुटेज में उसे देख चुका था। तारा को देखते ही वो मुस्कुराने लगा था और बोला था, अगर हमारी महारानी तारापरी आ गई है तो मुझे लगता है मुझे इस ऑफिस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फिर जल्द से जल्द विक्रांत रंधावा भी तारापरी के लिए अमन के घर की ओर रवाना हो चुका था। तारा जल्दी ही करिश्मा जी के पास चली गई थी। जैसे ही तारा ने करिश्मा जी के पास 2 से 3 औरतें बैठी हुई देखी, तारा ने जाकर उन्हें ग्रीट किया था। मिसेस खुराना ने जैसे ही तारा को देखा वो देखती रह गई थी। वैसे भी जब से उसने तारा को करिश्मा जी के साथ उनकी पार्टी में देखा था, तब से वो तारा से मिलना चाहती थी, क्योंकि तारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसे बार बार अपने बेटे का ख्याल आता था। मिसेस खुराना का मानना था कि इतनी खूबसूरत बहू तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि मिसेस खुराना में कूट कूट कर इंसानी फितरत भारी हुई थी, तो इसीलिए वो करिश्मा जी से काफी ज्यादा चिढ़ा करती थी। और जिस दिन से करिश्मा जी के साथ उसने उसकी बहू को देखा था, तब से उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि तारा जैसी बहू तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि तारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए रह रहकर बार बार मिसेस खुराना इसी बात को सोच जा रहे थे। कहीं ना कहीं वो ये भी प्लान बनाने लगी थी कि अमन की जगह अगर उसका बेटा तारा से शादी कर ले तो वो सबसे खूबसूरत बहू की सास बन जाएगी। तारा ने जैसे सबको प्रणाम किया और वहां से अपने कमरे में जाने लगी, तब मिसेस खुराना ने उसे रोक लिया था और करिश्मा जी की ओर देखते हुए बोली थी, हम मानते हैं करिश्मा जी, आपकी बहू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए आप उसे ज्यादा देर हम लोगों के पास नहीं बिठाना चाहती हैं। करिश्मा जी बोलने लगी थी, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बाहर से आई है तो थोड़ा थक गई है, तो इसलिए आराम करने के लिए जा रही है। तब मिसेस खुराना बोली थी, रहने दीजिए करिश्मा, रहने दो करिश्मा, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम नहीं चाहते तुम्हारी बहू को किसी की भी नज़र लगे, इसीलिए तुमने उसे कमरे में जाने के लिए कह दिया है। तारा मिसेस खुराना की बातें सुन चुकी थी तो वो अपने कमरे की ओर जाती हुई अचानक से रुक कर खुराना मिसेस खुराना की ओर बढ़ गई थी। प्रणाम 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 प्रणाम।